आनंद की खोज और असली सुख क्या है, दुख क्या है, उनके बारे में कुछ प्रकाश डाला था। तो कुछ बातें रह गई थी आज पूरी करते हुए आज के विषय में प्रवेश करेंगे। तो सुख की, क्षणिक सुख की, मायिक सुख की, भौतिक सुख की, इंद्रिय सुख की परिभाषा हमने कुछ की थी, लेकिन दूसरा जो लेक्चर आधा रह गया था वो सुख का उल्टा दुख। तो दुख की परिभाषा आज थोड़ी करते हुए, असली सुख क्या है, असली सुख कैसे मिल सकता है, ये करते हुए आज के विषय में प्रवेश करेंगे अगर समय मिल गया तो। चाहेंगे कि सब कुछ आज ही हम डिस्कस कर लें। तो मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायिनो नित्यम स्थान स्थितिक्ष भारत। हे भारत अर्जुन, जब इंद्रियों का स्पर्श इंद्रियों के विषय के साथ होता है, मात्रा स्पर्श, तो उसमें से सुख और दुख पैदा होता है। तो तू इन सुख और दुख को सहन कर, ताम तितिक्ष्व भारत, सहन कर। तो इंद्रिया जैसे हमको सुख देती है, वैसे आपको आप ऑटोमेटिकली हमको दुख भी देती है। सुख और दुख, जैसे सुख आता है वैसे दुख आता है, वैसे दुख आता है जैसे सुख आता है। सुख के लिए कोई सेपरेट एंडेवर, अलग प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। सुख और दुख आने और जाने वाले का स्वभाव वाला है। मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पायो, आने वाला और जाने वाला। सुख दुख का स्वभाव ये, न सुख रहता है सनातन काल तक न दुख। तो उनको सहन करने की शक्ति हमको कैसे आए वो जानना चाहिए। भगवान यहां कहते ताम तितिक्ष भारत, उनको तो सहन कर, सहन करना चाहिए, गम खाना चाहिए, गम खाने का सीखना चाहिए। तो एक मनुष्य जीवन में या कोई भी योगी में हमको तीन ताप सताते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि सनातन गोस्वामी पूछते हैं के अमी, मैं कौन, कहने हमार जारे तापत्रय, ये तीन ताप मुझको क्यों सताते हैं और मैं तीन तापों से मुक्त कैसे हूं। और यहां ना ही जानी हमी के मनी हित तो है, मैं ये नहीं जानता हूं कि मेरा हित कैसे हो। हालांकि सनातन गोस्वामी पैसों से बंगाल के प्रधानमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर, पैसों की कोई कमी नहीं थी, नौकरों की कमी नहीं थी, महलों की कमी नहीं थी, किस चीज की कमी नहीं थी, फिर भी कहते हैं के मने हित है, मेरा हित कैसे हो सकता है वो मैं नहीं जानता। ही पैसों में, स्त्री में, पुरुष में, इंद्रिय तृप्ति में हित नहीं है। हमारे शास्त्रों में हमारे चार हित बताए, सुख बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमारे हित बताए पुरुषार्थ। कोई भी योनि में जीव ये चार चीजों के लिए झंझना करता है, कामनाएं करता है, कैसे मुझको मैं धर्म बजाऊ। चीटी चिड़िया वो भी अपने बच्चों के लिए कण ले जाते हैं, दाना ले जाते हैं और बच्चों को पालन पोषण बच्चों का करती है और मनुष्य भी करते हैं। इसी तरह धर्म, अर्थ, उपार्जन, काम, विषय सुख, तो हर योनियों में, हर योनियों में हम करते हैं धर्म, अर्थ, काम। तो ये पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में जरूर बताया है। तो ये पुरुषार्थ जो है उसमें मेरा क्या हित है? सनातन गोस्वामी कहते हैं कि के मने हित है, मेरा क्या हित है मैं नहीं जानता। तो ये सब हित नहीं है। तो आज हम इस विषय थोड़ी चर्चा तो हो गई है के अमी, मैं कौन हूं, और जारे तापत्र। तो ये तीन त्रापों में हम दुखी थे, आदि दैविक, आदि आत्मिक एंड आदि भौतिक क्लेश। तापत्रय तीन ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। आदि दैविक ताप है, देवों से हमको दुख होता है, जैसे अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि, तापमान बहुत होना, बहुत ठंडी। हमारे वृंदावन में कल परसों बहुत ठंडी थी, फोन पर पता चला, और उसके साथ साथ बारिश। तो जो झुकी वाले सब गरीब वर्ग थे वो उनको छोड़ना पड़ा, दुखित हो गए। तो ये देवों से ताप है, आदि दैविक, इंद्र ने बारिश और ऊपर ठंडी। इंद्रदेव बारिश के अधित्राता देव है, तो बारिश नहीं बरसाते कई बार और बहुत बरसाते। सूर्य अगर इतना ही पृथ्वी से नजदीक आ जाए, 1 मिलीमीटर सा, तो हम दुखी दुखी हो जाए, तपित हो जाए, हमारा जीवन तप्त हो जाए। ये देवता है हमको दुख देते हैं। हालांकि देवता बहुत कृपालु है, दुख देने के लिए देवता नहीं है, लेकिन हमारे कंबाइन कर्म, सामूहिक कर्म के मुताबिक आंधी आना, तूफान आना, या तो अनावृष्टि, अतिवृष्टि, सामूहिक कर्म के मुताबिक हमको ये दुख मिलता है। जैसे भूकंप, तो सारा समाज भूकंप में दुखित हो जाता है। तो ये आदि दैविक, आदि भौतिक का मतलब है कि दूसरे जो जीवात्माएं हैं वो हमको दुख देते हैं। मच्छर काटते हैं, डेंगू, तो 1 महीना तक तो थारी बस बेड रेस्ट, और सास मतलब सासु, सास और बहू, पुत्र और पिता, पुत्री, ये घर घर की बात है। लोग पुत्री से बहुत दुखित होते हैं कई बार, पुत्री दुख नहीं देती, लेकिन शादियों के समय में जब उम्र लायक होती है तो दुख देती है, कहीं कहीं हर पुत्री नहीं। तो क्या मेरे घर आए दुखी होके पिताजी, बाद में मेरी पुत्री ये कर रही, ये कर रही, बाद में कहते हे महाराज, ये सब हर घर घर की बात। तो दुख ये है जो सबको लगा है, ऐसा नहीं कि एक उसमें से बाकात है, वो रियल दुख है। सही दुख क्या है कि सबको दुख लगा हो, वो दुख कोई मिटा नहीं सकता, अनलेस कि आप प्रयत्न करो। तो ये सामूहिक बात है, सबको आदि दैविक आदि आत्मिक आदि भौतिक क्लेश सबको। तो ये आदि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि भौतिक क्लेश दूसरे जीवात्माओं से हमको दुख हो, और आध्यात्मिक क्लेश का मतलब है कि हम हमारे दुख खूब पैदा कर लेते हैं। जैसे मन से दुख, किसी ने आपको गाली ना दी लेकिन आप समझ लेते हो मन में कि इनने मुझको गाली दी, उनने गाली नहीं दी, उनने दुख नहीं दिया, लेकिन हम मन में पैदा कर लेते हैं दुख। टेंशन, डिप्रेशन ऐसी कोई चीज है ही नहीं, हमको कभी टेंशन डिप्रेशन आता ही नहीं। हम समझना चाहते हैं कि टेंशन डिप्रेशन क्या चीज है। तो टेंशन डिप्रेशन जैसी चीज है ही नहीं। टेंशन डिप्रेशन का मतलब है कि कोई भी एक भौतिक चीज में आपको अतिशय आसक्ति, अखूट आसक्ति, और वो आसक्ति में से आप निकल नहीं पा रहे, इसलिए आपको टेंशन डिप्रेशन होता है। छोड़ो उनको, भाग में डाल दो या गटर में डाल दो। एक टैक्सी वाला था जब मैं बड़े मंदिर में प्रेसिडेंट था, ईस्ट ऑफ कैलाश, तो एक हमारे मंदिर का टैक्सी वाला था, तो एक भक्त ने उनका टैक्सी का बिल 70-80,000 बना दिया और बाद में वो मर गए टैक्सी का बिल भरने के बिना चल बसा। तो टैक्सी वाला हर रोज आता था मेरे पास, हर रोज पैसा क्या करो प्रभु जी। मैंने बोला ये सब इनवॉइस इतना लेके आता था, तो मैंने कहा ये सब इनवॉइस आप खुद एक गटर में डाल दो, आपका दुख चला जाएगा। दर हर रोज इतना दुखी होके आता था, टेंशन डिप्रेस ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड बेचारा टैक्सी वाला, और 80,000 का घाटा। तो मैंने कहा देखो यहां भौतिक आसक्ति है, वो चला गया, अभी उनके उनके इनवॉइस है उनको भी चले जाना था, तभी आपका सुख। बाद में एक वीक के बाद आना डाल दिया सारे गटर में, एक वीक के बाद आया, प्रभु जी आप सही कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे, तुम इतना सुखी हो गया क्योंकि वो आसक्ति चले गए। तो ये हमारी आध्यात्मिक क्लेश है हमारा, हम खुद पैदा कर लेते हैं आध्यात्मिक क्लेश। वैसे क्लेश जैसी चीज ही नहीं है, लेकिन हम मान बैठते हैं इसलिए क्लेश। तो केने अमार जारे तापत्र, ये तीन ताप से मेरी मुक्ति कैसे हो, यह नहीं जानी अमी के मन हित है। हित की बात आगे बढ़ाते बताएंगे, अभी क्लेश क्या है, तो दुख क्या है। दूसरा दुख क्या है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी, ये षड रिपु का हमको दुख है, हमको नहीं चाहिए ये षड रिपु से छह दुश्मन हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम ये इन छह शत्रुओं को हम आमंत्रण देते हैं, आइए आमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि पति पत्नी, पुत्र पिता या सास बहू के बीच में क्रोध न हो, कौन चाहता है, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन हम आमंत्रित करते हैं क्रोध को, और घर को जंगल बना देते हैं। गृह माता नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी, घर में अप्रियवादिनी भार्या है और घर में प्रेम से भरपूर माता नहीं है, तो वो घर छोड़ देना चाहिए। पत्नी अगर प्रियवादिनी नहीं है, आए तो तुरंत शुरू कर दे, कुछ न कुछ बहाना ढूंढ के, कुछ कवचन खराब वचन बाइटी कर थी। तो ऐसी बारियां हो और माता घर न हो तो वो घर जंगल बन जाता है। यथा गृह यथा जन यथा वनम तथा गृह। तो कहने का मतलब है क्रोध हमको चाहिए नहीं, लेकिन क्रोध हम पैदा कर लेते हैं। क्रोध जीरो लाइन पर चलना चाहिए। जी क्रोध हमारा दुश्मन है, तो ये हमारा दुख है। दुख काम ये हमारा दुख है। काम मतलब आसक्ति, हर चीजों में, हर इंद्रियों में, हर वस्तु में हमारी आसक्ति। भगवान के सिवा, भक्तों के सिवा, भगवान और भगवान के भक्तों के बिना सब चीजों में हमको आसक्ति। ये काम इंद्रिय प्रीति वांछा धारे कामना, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धारे कामना, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धारे प्रेमना। प्रेम और काम एक दूसरों से कंप्लीटली अपोजिट है। तो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की वासना कामना उसको बोलते हैं काम। अपनी इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय आंख कान नाक जीभ त्वचा। तो ज्ञानेन्द्रियों को तृप्त करना उनको बोलते, अपनी ज्ञानेन्द्रियों को तृप्त करना उसको बोलते हैं काम। सेंस ग्रेटिफिकेशन, प्रभुपाद जी ये शब्द बहुत उपयोग करते हैं। नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफाइंग सेंसेस, मतलब हम अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के गंदे खुराक देना देना उसको बोलते हैं काम। धारे कामना और कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करना उसको बोलते हैं प्रेम। तो ये काम हमको नहीं चाहिए, क्रोध हमको नहीं चाहिए, लोभ हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये तीनों नरक के द्वार है। त्रिविध नरक सेदम द्वार नाशनम आत्मनम, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् त्रयते त्यजेत। तीन नरक के द्वार है, त्रिविध नरक सेदम द्वार। कौन से नरक के द्वार है? काम क्रोध और लोभ। जैसे ही आप क्रोध करते हो, काम करते हो, लोभ करते हो, नर के द्वार पर खड़े, और ये लोग तीनों लोग आपको नर के अंदर धक्का देंगे और आप नर में फंस जाओ। तो ये हमारा दुख है, हमको नहीं चाहिए ये तीन चीजें। और सब रिपूस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य नहीं चाहिए, लेकिन हमको, हम उनको आमंत्रण करते ही देते ही आमंत्रित करते हैं। तो ये हमारा दुख है। और दुख है काम कर्म और माया। अभी माया की बात थोड़ी सी बताई। तो ये जीव जो है अनादि बहिर्मुख कृष्ण भूली गेला। जीव अनादि काल से बहिर्मुख है। ऐसा नहीं कि सृष्टि की रचना हुई तब से, सृष्टि की रचना हुई उससे पहले से ये भौतिक संसार में जो जीव है वो बहिर्मुख है, अनादि बहिर्मुख जीव। चैतन्य देव सनातन गोस्वामी को कहते हैं ये बुक जो है वो आपको ले जानी चाहिए, ये बहुत सुंदर बुक है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, सुंदर बुक है। जो आज 7 दिन चर्चा होगी यहाँ सुंदर तौर से चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। अपने मुताबिक आपको उनको काल को वशीभूत होना ही पड़ेगा। मृत्यु काल आएगा, मृत्यु को काल कहते हैं, मृत्यु काल। तो आपका कोई बस चलने वाला नहीं है। काम को स्वाभाविक तौर से सरेंडर होना ही पड़ेगा। जो भी काल आपका वक्त, जैसे कि कोई बोलते हैं ग्रह, हमारा काल खराब है, तो ये ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों का कुछ असर हमारे पर होती है, लेकिन वो असर नहीं चाहिए तो हरे कृष्ण महामंत्र के गान से आपके सब ग्रहों को कह सकते हैं कि हमको आशीर्वाद दो, तो वो ग्रह सारे आशीर्वाद देंगे। क्या मंत्र बोलना है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये काल है, ये कली काल है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, कली काल। तो ये काल हमको फंदे में फंसाता है और काल किसी को छोड़ता नहीं। ये काल का हमको बंधन है, काल को हम सरेंडर करेंगे ही हमारा कोई बस चलने वाला नहीं। कर्म भी हमको बंधन में डालते हैं। पुण्य कर्म स्वर्ग, स्वर्ग में जाना ही होगा और वहां छिड़े पुण्य मृत्यु लोगों का विशंति अहित त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लगते। स्वर्ग में जाना आना भुक्ता भुक्ता पलिए, जाना और आना, जाना और आना। मरना तो पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहेगी। आप ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्ति नो अर्जुन, ब्रह्म लोक सत्यलोक मतलब टॉप मोस्ट स्वर्ग, वो सबसे ऊंचा स्वर्ग है सत्यलोक, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक पर भी जाओगे फिर भी पुनरावर्ति अर्जुन, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मुरुते। ब्रह्मलोक भी पहुंच जाओ फिर भी पुनः पुनः जननी के जठर में आपको शयन करना ही पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा भी आदि का चक्कर रहेगा ही। तो इसलिए ये जो पुण्य कर्म है ये कर्म का बंधन है और पाप कर्म का बंधन तो जानते हैं नर्क। हम कर्मयोग में थोड़ा सा नर्क के बारे में बताएंगे। तो अगर खराब कर्म किए तो नर्क में आपको वेदनाएं दुख भोगना ही पड़ेगा। तो ये कर्म जो है विकर्म के सिवाय, कर्म अकर्म के सिवाय विकर्म और कर्म उनका बंधन रहेगा है, ये हमारा दुख है। और माया, काल कर्म और माया, ये तीनों का हमको बंधन, फंदा फंसा, हम चाहते हैं मुक्त हो जाए। माया अभी आपको सुनाया कि माया दो प्रकार से हमको पीड़ित करती है। एक है माया जवनी का आच्छन्न, मतलब माया हमारे ऊपर पर्दा डालती है, आच्छन्न जवनी का, जवनी का मतलब पर्दा, आच्छन्न आवृत करती है। और दूसरा माया क्या करती है? अहम ममत्व करती है, ये दूसरा माया का कर्तव्य। एक है देह और देह के सगा संबंधियों में अहम ममत्व कराती है और दूसरा वो जीव को अंधकार में डालती है, जो नहीं है वो बताती है। हम ये शरीर नहीं है, लेकिन माया क्या बताती है? आप ये शरीर, आप आत्मा नहीं हो। तो माया के दो बिजनेस क्या करते हैं? माया जीव को अंधकार में डालती है और दूसरा माया माया शरीर और शरीर के संबंधियों के साथ अहम ममत्व कराती है, अंधकार में डालती है, अहम ममत्व कराती है। ये माया के दो कार्य, उसमें से कौन बचेगा? कौन ये देहात्म बुद्धि के स्तर पर नहीं रहता, देह को कौन देह नहीं मानता, मतलब कि मैं ये देह हूं, आत्मा के स्तर पर कोई नहीं रहता। आत्मा आध्यात्मिक स्तर पर कोई नहीं रहता, सब समझते हैं शरीर। तो ये माया का फंदा है, देह और देह के संबंधियों के साथ अहम ममत्व करना और जीव को अंधकार में डालना, ये माया का दो धंधा बिजनेस। और ये हमारे ऊपर बहुत, ये भौतिक संसार जो है वो माया का साम्राज्य है। दुर्गा, दुर्गा, दुर्ग मतलब कि वो किला जिसके पार आप नहीं जा सको, उसको बोलते दुर्ग, दुर्गा, दुर्गा शक्ति, माया शक्ति। ये दुर्गा शक्ति का साम्राज्य है ये सारा भौतिक संसार, जहां दुर्गा देवी का साम्राज्य है। दुर्गा ये माया का पर्सोनिफिकेशन, माया, माया की मूर्ति है दुर्गा देवी, माया, माया की मूर्ति है। और दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल होता है, वो जीव को ये दुर्ग में रखती है। ये भौतिक जगत जो है ये आध्यात्मिक जगत से एक चतुर्थांश, वन फोर्थ, और ये भौतिक जगत में माया का साम्राज्य है, दुर्गा का साम्राज्य है। और ये दुर्गा जीव को जबरदस्ती से ये भौतिक संसार में पकड़ के रखती है। क्यों अनादि बहिर्मुख जीव? क्योंकि जीव भौतिक संसार में बहिर्मुख है, भगवान उन्मुख नहीं है, भगवान को उन्मुख नहीं है, भगवान से बहिर्मुख है, मतलब भगवान से उल्टा जा रहा है। इसलिए माया ये भौतिक संसार में जीव को बंधन में डालती है। भाई अनादि बहिर्मुख जीव कृष्णा भूल गए, अतएव माया तारे जापो किया करो। बहिर्मुख जीव कृष्ण को भूल जाता है, इसलिए माया जी को हर पल जापों की याद आ रही, मार मारती है, पीड़ित करती है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, देखिए माया शक्ति कैसी है कि हबुडुबू भर, कोई बार जी को पानी में डुबा देती है, अंदर रखती है घंटों तक, और जीव घबराता है श्वास के बिना। जैसे कोई मनुष्य हो, राजा, उनको अगर दंड देना चाहता है तो नदी में उनको डुबो देता है, और कई मिनट के बाद जब घबरा जाता है तो बाहर थोड़ा सा सांस लेने के लिए, उच्छ्वास श्वास लेने के लिए बाहर निकालता है और तुरंत पानी में डुबो देता है, तुरंत बाहर निकालते पानी। तो इसी तरह माया जो है वो जीव को पानी में रखती है, बंधन में रखती है। जीव बहुत घबराता है माया से, लेकिन माया कभी उनको मुक्त नहीं करती, क्योंकि वो बहिर्मुख है। अगर उन्मुख हो जाए भगवान की ओर, अगर वो चले तो तुरंत प्रमाण भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रताप पाए भक्ति लता बीज, उनको तुरंत भक्ति लता बीज मिल सकता है, लेकिन उन्मुख हो, विमुख नहीं। तो ये हमारा दुख है, काल कर्म और माया का दुख है, बंधन है। आदिदेहिक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक दुख है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का दुख है। तो ये सब दुख हम छोड़ना नहीं चाहते, ये हमारा एक पहलू है। तो दुखों को छोड़ना चाहिए, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। ये दुख आत्यंतिक मतलब कि दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए, ऐसा मार्ग बनना चाहिए। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, नॉट इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, वी मस्ट इंक्वायर हु वी आर। ये मनुष्य देह हमको मिला इसलिए मिला कि हम ये प्रश्न हम खुद को कर सके कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये आत्यंतिक दुख निवृत्ति हमको हमने इनका ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर माया दारे जापो की याद आ रहे। ये दुख ऐसे है, एक कवि कहते हैं कि कामादिना कृतिना कथिता पलिता दुर्निदेश तेसाम जाता महिना करुणा न तापा न उपशांति। ये जो कामादि काम क्रोध दोह मद मत्सर्य आदि जो दुख है कामादिना कथिता, तो इन सबों को और इंद्रियों को सबको मैंने बहुत सेवा की। मैंने इंद्रियों की विषयों की काम क्रोध लोभ मत्सर्य की सबकी मैंने बहुत सेवा की, फिर भी क्या कहते हैं कि न साम जातु महीना करुणा, वो लोग मेरे ऊपर करुणा नहीं करते। काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य या तो इंद्रिय ये सब इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियां इन सबकी मैंने बहुत सेवा की, जीव ने जीव उन सबों की बहुत सेवा कर चुका है, तो जीव क्या कहता है फिर भी ये सब चीजें मेरे ऊपर करुणा नहीं करते हैं, दे आर थैंकलेस। चाहिए कि वो तृप्त हो जाए, मैंने बहुत सेवा की इंद्रियों की काम क्रोध की, वो तृप्त हो जाए मैं चाहता हूं, लेकिन वो कभी भी तृप्त नहीं होते, मेरे ऊपर करुणा नहीं करते, शांति मेरी शांति भी नहीं करते। दुष्परिणाम भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन ये इंद्रियां कभी भी तृप्त होने वाली नहीं। जितना इंद्रियों को सुख दोगे इतना इंद्रियां ज्यादा मांगेगी। दुष्परिणाम अनल अग्नि, अग्नि में आप केरोसिन ज्यादा डालोगे और बोलो बोलो अग्निदेव तृप्त हो जाए, मैं ज्यादा केरोसिन डालता हूं तृप्त हो जाए, कभी नहीं होता। जितना ज्यादा डालोगे इतना ज्यादा मांगे ना ज्यादा अग्नि फैलेगा। घर जलता हो और कहो कि थोड़ा सा मैं फ्यूल दे देता हूं आप तृप्त हो जाए, फ्यूल देने से ज्यादा बढ़ेगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मैंने तो देखा आंखों से गिरते हुए वहां था ऊपर, तो इतनी ज्वाला क्यों, वो प्लेन का सारा गैसोलीन मतलब उनका पेट्रोल सारा इमारत में, तो ज्यादा ज्यादा चलेगा। ऐसा नहीं कि फ्यूल दिया तृप्त हो जाए, तो दुष्परिणाम चल ये इंद्रिया जितना आप इंद्रियों को इंद्रियों का विषय सेंस ग्रेटिफिकेशन दोगे इतना ज्यादा मांगेंगे। कई संप्रदाय नहीं कहूंगा, कई लोग नए नए लोग हैं नया नया पंथ निकालते हैं, नाम भी नहीं कहूंगा, बोलते हैं कि आप स्त्री सुख बहुत करो, सेक्स सुख बहुत करो, जितना करना है करो, बाद में आप तृप्त हो जाओगे, बाद में भगवान की ओर जाओ। तो ऐसा कोई तृप्ति का इलाज नहीं है। दुष्परिणाम जितना ज्यादा इंद्रियों को इनका विषय दोगे इससे ज्यादा वो मांगेगी। तो ये है इंद्रियां की विटमना जो दुख देने वाली। तो ये सुख दुख ये शरीर के साथ संलग्न है, सुख दुख विषय है शरीर का। सुख हमारे नरसिंह मेहता कहते हैं कि सुख दुख मन मा न आनी घट साथे रे घड़िया टाड़िया ते कोई ना नव टड़े रघुनाथ न जड़िया। कहते हैं कि सुख दुख मन में मत लाओ, क्योंकि सुख दुख एक घट मतलब शरीर के साथ संलग्न है। जैसा शरीर आपका वैसा आपका सुख दुख होगा ही, आपके शरीर के मुताबिक आपको सुख दुख मिलता है। जैसा शरीर वैसा सुख दुख, घट साथे रे गड़ी टाड़े दे कोई ना नवटड़ी, रघुनाथ न जड़ी। ये सुख दुख टालने से चलते नहीं, क्योंकि कर्मों से हमको सुख दुख ये शरीर को मिलते हैं। इसलिए सर्व देव ने जारे भीड़ पड़ी समर्या अंतर जामी भावत भागी भूदरे मेहता नरसई न स्वामी। सर्वदेव 33 करोड़ देव है, इन सबों को जब दुख पड़ता है, राक्षसों का दुख देवों को पड़ता है, तुरंत क्षीर सागर समुद्र पर आते हैं और वहां भगवान श्री कृष्ण की वो प्रार्थना करते हैं पुरुष सूक्त से, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्रपाद, ऐसे पुरुष सूक्त से, पुरुष सूक्त से। तो ये सुख दुख देवों को भी मिलता है और मनुष्य को भी मिलता है, उनकी चिंता मत करो। तितिक्ष भारत तितिक्ष उनको सहन करना सीखो। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग, जो कोई भी हालत में आनंदित रहने का रहने की कला जो है वो हमको आना चाहिए। और कई लोग हैं उनको दुख पहाड़ गिरने वाला दुख हो फिर भी हंसते हुए वो प्रसार कर, और कई लोग हैं छोटी सी चीटी अगर कुछ कर गई तो उनका दुख इतना बड़ा मारेगा, हरे राम मच्छर काट गया अभी क्या होगा, बड़ा दुख। तो ये सुख दुख देवों को भी आता है, आपने सुना हिरण्यकशिपु का दुख देवों को आया, रावण का दुख भी देवों को आया, कई कई बड़े बड़े राक्षसों का दुख, सब देवों को दुख आया। मुझको कोई देव बताओ तो जिसको दुख ना आया। इंद्र को दुख नहीं आया, इंद्र हमारे देव है, स्वर्ग के देव, स्वर्ग के राजा, और इंद्र को हर पल दुख आता क्योंकि वो विषय सुख में लगा रहता है और विषय सुख में और कुछ है नहीं। तो देवों को दुख आता है तो हमारी क्या गिनती। इसलिए भगवान के तान तितिक्ष भाव इनको अच्छी तरह से झेलना सीखो, उसमें से कैसे प्रसार हो जाए। भक्तों को दुख स्पर्श ही नहीं कर सकता, हम दुखी ग्लानी हम दुख दुख को देखते ही नहीं, दुख क्या चीज है हमको पता ही नहीं चलता। संत को सदा दिवाली और आठे पहर आना। संत जो होते हैं वो सदा दिवाली मतलब उत्सव, संत को हर रोज उत्सव, उनको हर पल उत्सव रहता है। और हमारा जो भक्ति का विषय है वो हर पल उत्सव, नव 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 माधुर्य लीला, माधुर्य लीला भगवान नव नव माधुर्य लीला करते हैं और हम उनका आस्वादन करते हैं। तो दुख तो वहां दूर ही पहरा भरता इधर उधर होता और वहां से ही चला जाता कि यहाँ तो आनंद का साम्राज्य है, हमारा काम नहीं है, दुख नजदीक नहीं आ सकते। और आगे बहुत आनंद 24 घंटे में 8 पहर होते हैं और 8 प्रहर आनंद। अगर खान पान नहीं मिला कोई बात नहीं, 5-10 दिन पानी से चला लेंगे, क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। हमारे सर्व गोस्वामियों ने कितना सुंदर उदाहरण दिया। जीव गोस्वामी जब उनके गुरुदेव ने कहा मैं आपका मुख देखना नहीं चाहता हूं, बात बहुत लंबी है, मेरे मुख यहां से आप चले जाओ, वृंदावन छोड़ दो, गुरुदेव की तुरंत आज्ञा का पालन किया और नंद घाट पर गए और जहां मगरमच्छ रहता था वो गुफा में रहते थे और कभी भी मधुकरी करने गए नहीं, और जब जो कोई दे जाए ले लिए, अगर नहीं दे जाए तो उन दिन राग और जमुना जल पी लिए और उसमें मस्त रहते थे। ऐसा नहीं कि उसको भूख लगी है क्या करूं, अभी कहां जाऊं, किसके पास मांगू, ऐसा कोई सोच ही नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी वो भीख मांगते थे, लंबी कहानी वो भी, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं वो ये देगा, वेश्या की तरह सबके पास ये नहीं देगा ये देगा, छोड़ दिया, भीख मांगना भी छोड़ दिया। और जगन्नाथ जी के चावल का प्रसाद जो गाय भी नहीं खाती थी, तीन तीन चार चार दिन के जो फेंके जाते थे कूड़े में, कूड़े में से निकाल के वो चावल को समुद्र के जल से धो देते थे, सुखा देते थे, बाद में वो चावल का राइस, वो चावल का प्रसाद अभी भी जगन्नाथपुरी में मिलता है। तो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कितने धनी, हर महीने की इनकम उनकी थी 20 लाख सोना महोर, 20 लाख, 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8,000 रुपया, इतना रुपया हर महीना इनकम, सब कुछ छोड़ छाड़ के अप्सरा की तरह अपनी पत्नी छोड़ दी, खान पान की दुख की चिंता कहां तक उनके पास दुख आ सकता है, दुख कहां है उनका, जो उनकी जो चेतना, उनका जो कॉन्शियसनेस है, चेतना भगवत चेतना, कृष्ण चेतना उनके ऊपर इतनी उठी हुई है कि उनको देह का कोई ज्ञान ही नहीं है, उनका देह भी दिव्य हो गया है। दिव्य देह मतलब आहार निद्रा भय मैथुन नेक्स्ट टू नथिंग, आहार निद्रा भय मैथुन ये बिल्कुल नेक्स्ट टू नथिंग। तो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये सुख दुख छोड़ते हैं, दुख को भाड़ में, सुख को भाड़ में, भाड़ मतलब अग्नि में जला, मुझको पता नहीं भाड़ क्या है लेकिन कुछ ऐसा उनका अर्थ होता है, ये है भाड़ मतलब अग्नि में जला देना, हाँ भट्टी बाहर जला, भट्टी में उनको जला दो। हमको चाहिए क्या, हमको सनातन आनंद चाहिए, सनातन सुख, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, सनातन सुख। तो सनातन सुख कैसे मिलेगा, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक गलकम का जो रह गया तो वो पूरा करते हैं। तो अभी ये सब्जेक्ट भी आपको कई तरह समझाना चाहेंगे लेकिन टाइम की कितने टाइम तो सो गए, ये बहुत सुंदर विषय है कि चिरन काल तक हमको आनंद कैसे मिलता है। जैसे कि सुख का उल्टा है दुख, तो ये जो भौतिक संसार है वो डुअलिटी बोलते हैं, द्वैत द्वंद्व, द्वंद्व बोलते हैं, यह द्वंद्व है, सुख दुख, ठंडी गर्मी, मान अपमान, तो ये द्वंद है। आनंद का कोई द्वंद है, आनंद का उल्टा शब्द है, किसने सोचा आनंद का उल्टा क्या शब्द है, सुख दुख का है, आनंद का आनंद वी आनंद क आनंद कु आनंद ऐसा कुछ है, आनंद ये आध्यात्मिक चीज है, सत चित आनंद, सत का भी उल्टा कोई है, असत, असत जैसी चीज नहीं है, सत सत ही है, असत का मतलब कि माया, माया सत असत, तो माया जैसी चीज ही नहीं है, मैंने भी व्याख्या की, माया मतलब जो नहीं है वो बताती है असत। तो सत चित, चित मतलब संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान में अज्ञान नहीं होता, उनका संपूर्ण ज्ञान का उल्टा नहीं है सत चित आनंद, आनंद का उल्टा कुछ नहीं। तो ये आनंद दिव्य है, दिव्य आनंद, ऋषभदेव कहते हैं, क्या कहते हैं कि नायन देहो देह बाजन नृलोके कष्टान कामान अरहत्वीट बुझावे तपो दिव्यम पुत्र कायन सुद्वेर सत्य ब्रह्म सौख्यम चानंतम। ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख आनंद, सुख के आगे ब्रह्म लगा है, मतलब दिव्य, दिव्य आनंद, दिव्य आनंद मतलब ब्रह्म, दिव्य सुख मतलब आनंद। ब्रह्म सौख्यम चानंतम, सो नायन देहो देह बाजन नृलोके, ये लोक में ये देहधारी सब लोग कष्टान कामा, कामना के लिए कष्ट झेल रहे हैं, कष्टान कामा, लेकिन ये कामना वीर बुझाने, जो वीर वीर मतलब विष्ठा, भुजा खाना, जो विष्ठा खाने वाले सुवर को भी ये सुख दुख मिलता है, कष्टान कामा और अति बुझाने। इसलिए ये सुख दुख की चिंता मत करो। पुत्रों को कहते हैं, 10,000 उनके पुत्र थे ऋषभदेव जैन के पहले तीर्थंकर, जैनी जम यहां से शुरू हुई, लेकिन वो जानते नहीं कि ये ऋषभदेव उनके पहले तीर्थंकर जो है वो कृष्ण भगवान के 27 अवतार भागवत में लिखा। तो ये कहते हैं अपने पुत्रों को कि नायन देह देह बाजन लोके कष्टान कामान विद्विजाने, इसलिए आप एक कष्टान कामा छोड़ दो, सब काम कामना के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना छोड़ दो, कष्टान कामा, क्योंकि ये सुख दुख सबको मिलता है, विष्ठा खाने वाले प्राणियों को भी मिलता है। इसलिए क्या करो, फिर तपो देवियम पुत्र का तप करो, ये मनुष्य देह तपस्या के लिए, और हमारे प्रभुपाद जी ने ये तप बहुत बहुत कम करके हमको दे दिए, बहुत कम करके, और इतना कम किया जिससे आपका आध्यात्मिक कल्याण हो ही जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका अध्ययन बहुत कम कर दिया और सस्ते में दे दिया, कंसेशन दे दिया, सब्सिडी लगा दी तप में, इसलिए आपका कल्याण नहीं होगा। कई लोग सब्सिडी लगा देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, लेकिन उसमें आपका कल्याण नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने जितना ऑप्टिमम, जितना चाहिए इतना कम करके हमको दे दिया। तपो दिव्यम, दिव्यता, ट्रांसेंडेंटल ऑस्टेरिटी, तो वो क्या है कि हम जो भी स्थिति में, सारे स्थिता श्रुतिगता, जो भी स्थिति में हम हैं, वो स्थिति में हम 16 माला करें हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 16 माला, कोई बड़ी बात नहीं। आप 22.5 घंटा काम करो, शरीर के लिए, कुटुंब के लिए, जिसके लिए करना है 22.5 घंटा काम करो, 1.5 घंटा 16 माला तक आसान हो। वो भी ऐसा नहीं कि ऐसे बैठो और बराबर नाक देखो और ऐसा कुछ नहीं, आप आसानी से, उनमें कोई नियम नहीं रखे, नियमित स्मरण रखा। हालांकि ये लेंगे हम सब्जेक्ट में यहां पहुंच करूंगा कि तब बहुत कम करके दिया है, तप करना ही चाहिए। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए, मनुष्य जीवन कुत्ते गधे सुवर की तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। तपो दिव्यम पुत्र का, हम कुछ समय में भरकर देंगे, प्रसाद लेके जाओ, हम जल्दी कल संडे है, तो तपो दिव्यम, दिव्य तप करने के लिए मनुष्य जीवन, तो दिव्य तप से क्या होगा, ब्रह्म सौख्यम च अनंतम, कैसा सुख आपको मिलेगा, रिलेटिव सुख नहीं, सुख के साथ दुख वाला ये सुख नहीं मिलेगा, ब्रह्म सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, और पैसा इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, कितना मिलेगा? अनंत ब्रह्म सौख्यम च अनंत। ये जो भगवान श्री कृष्ण, तप की परिभाषा क्या है? तपोदिव्य। तप की परिभाषा है भगवान श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए कुछ दुख झेलना, वॉलेंटियरली टेकिंग ट्रबल फॉर कृष्ण, इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी। प्रभुपाद डिफाइंस, एक्चुअली रूप गोस्वामी उन्होंने डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है? कि हरि संबंधी वस्तु ना, वॉलेंटियरली टेकिंग ट्रबल फॉर कृष्ण इज ऑस्टेरिटी। ऐसा नहीं कि हमारे इंद्रियों को बहुत कष्ट दें, जैसे कि तापमान बहुत है और हम आग लगाए और बीच में बैठे और ध्यान करें, हमको कष्ट देंगे। हिरण्यकशिपु में कष्ट दिए, अपने अपना सारा मांस सब कुछ, तो ये कष्ट नहीं। तपो दिव्य मतलब कि तप वो है तो कृष्ण भगवान की खुशी के लिए हम कुछ दुख उठाए। जैसे हमारे यजमान है जसोदानंद प्रभु और दीपाल जी और कई कई प्रदीप और कई नाम नहीं होगा, अंत नहीं आएगा, लेकिन कहने का मतलब कि इन लोगों ने ये शिविर और ये 7 दिन का प्रोग्राम सप्ताह आप सबके लिए आयोजन किया, तो ये तप है। लेकिन किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनाने के लिए। आप सबको हम श्री कृष्ण भगवान के भक्त बनाते ही छोड़ेंगे अगर आप 7 दिन की सप्ताह सुन के हृदय में गांठ लगा लोगे, तो आप भक्त बनोगे ही बनोगे। तो इसलिए हमने तप किया भगवान के लिए तप। तो तपो दिव्यम पुत्र का एन शुद्धेन यस्मा ब्रह्म सौख्यम च अनंतम। ये अनंत सुख वर्धन, सुख का वर्धन होता रहता है, वो सुख दिव्य सुख है। आनंद बुद्धिवर्धन प्रतिपदा पूर्णामृत स्वादनम। आनंदाम बुद्धिवर्धन, ये जो सुख है, ये जो दिव्य सुख है, ये जो आनंद है, वो आनंद अंबुदी, अंबुदी मतलब सागर, सुख का सागर वर्धन करने वाला है सुख, आनंद है। आनंदाम्बुदी वर्धन प्रतिपदा, हर पल ये आनंद का वर्धन होता रहता है। तपो दिव्य, दिव्य तपस्या से आनंदाम्बुदी वर्धन प्रतिपदा पूर्णामृत स्वादन सर्वात्मा स्नपन। और ये सर्व आत्माओं का ये जीवन है हरिनाम संकीर्तन। हमारे सब गोस्वामी वो भी आनंद की लहरी में, आनंदाम बुद्धि वर्धन निपुण सद्धर्म संस्थापक लोकानाम हित कारण त्रिभुवने मान्य शरण्या करो। आनंदाम बुद्धि वर्धन निपुण, आनंद दिव्य आनंद का वर्धन करने में वो निपुण थे, प्रवीण थे। ऐसा नहीं कि एक कंठा पतली सी गोदड़ी, पतली सी कंठा मतलब कंबल और इतनी बिलो जीरो वेदर, उसमें वृंदावन में हर रोज नए पेड़ के नीचे रहना और कितना कष्ट, कितना दुख, नहीं। आनंद आनंद वर्धन एक निपुण, निपुण थे आनंद का वर्धन करने में। कितना कितना आनंद, दिव्य आनंद में वो डूबे हुए थे। ये है दिव्य आनंद, और हम ये आनंद का सुख मान सकते हैं, आनंद का सुख हम अनुभव कर सकते हैं। कैसे? श्री कृष्ण में हमारा अतिशय प्रेम हो जाए। इनका नाम ही भक्ति है। भक्ति की परिभाषा क्या है? श्री कृष्ण भगवान में अतिशय प्रेम होना, उसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति की परिभाषा याद रहा, भक्ति की परिभाषा है श्री कृष्ण भगवान में अतिशय ऐसा जो प्रेम अति प्रेम वो है भक्ति। तो ये भक्ति अगर हम करें और भक्ति में हम संलग्न रहे, चाहे वो 1.5 घंटा भी हो, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो कहा उसी तरह हम 1.5 घंटा भक्ति करें, 2 घंटा, तो सारा दिन हमारा आनंद में रहेगा। सारा दिन जैसे बैटरी आपने एक बार चार्ज कर ली, आपका इन्वर्टर है, बैटरी है, इन्वर्टर को चार्ज कर दिया तो बाद में वो चलता रहेगा। इसी तरह ये 2 घंटा आपने भक्ति से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके आनंद की बैटरी आपने भर दी, तो ये बैटरी आनंद सारा दिन चलता रहेगा। दूसरे दिन फिर से 2 घंटा बैटरी चार्ज। तो ये कला आपको सीखनी पड़ेगी, कैसे जीवन को धन्य धन्य बना दे। सुख और दुख हमारे नजदीक ही ना, दूर से ही बाहर जाए, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। वो स्वभाव हमको कृष्ण भक्ति से ही हो सकता है। आडंबर और अहंकार सब मलिन चीजें, जीरो। तो ये है प्रेम, भगवान का प्रेम, उससे हमको चिरंजीव चिरं सुख मिल सकता है।